खुदावंद के जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखना शुरू करें, आए चंद लम्हों के लिए इन लम्हों को खुदावंद की नज़र करेंगे, ताकि आज हम जो कुछ भी सीखें हम सब के लिए और आज सारे दिन भर में हम उसके कलाम को याद रखें और उसमें खुशी और हम्द और सना के गीत गाते रहें, ताकि यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। सो आए हम सब खुदा के हजूर झुकें और दुआ करें कि खुदा बाप, तेरा कलाम जो बेतासीर नहीं लौटता, हम सब के लिए कुदरत, बरकत, रहनुमाई, नसीहत का वसीला ठहरे। बहरोबर के खालक और मालक, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से पुर हैं, और कोई भी चीज़ तेरी मर्ज़ी के बगैर वजूद में नहीं आती। मौसम तेरे इख्तियार में है, ज़िंदगी और मौत तेरे हाथ में है। दुख और तकलीफ़ हमें छू नहीं सकती जब तक तेरी मर्ज़ी ना हो, और ज़िंदगी की सांसें भी तेरे ही हाथ में हैं। तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए कि तूने आज हमें ये मौका दिया कि तेरे कलाम में से सीखें। आई हुई तमाम बहनों के लिए, माओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार तुझसे किया है, सबके लिए खुदावंद तुझसे बरकत चाहता हूँ। और कलीसिया के लिए खुदावंद कलीसिया बेदार हो और अपने इस ज़मीन पर अपने दिन गिनना सीखे। यीशु के नाम में आज जो कुछ हम सीखें उन सबको बड़ी बरकत दे, ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सो खुदावंद के कलाम में से हम निकालेंगे नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका दो बाप, उसकी चौथी आयत से हम 10वीं आयत तक का हवाला पढ़ेंगे, और 6ठी आयत में से आज चंद एक बातें सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम सब इस हवाला को पढ़ें, क्योंकि इसके पीछे जो वजह ये है पढ़ने की, ताकि बच्चे बड़े हम इसको पढ़ सकें, क्योंकि खुदा ने अपना कलाम हमें पढ़ने के लिए दिया है, ताकि हम याद करें, ताकि हम याद रखें, ताकि हम बरकत पाएं। सो खुदावंद का कलाम यूं कहता है 4थी आयत में इफ़सियों 2 बाप में, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है, और मसीह यसू में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यसू में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहाय दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं, और मसीह यस्सु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। जैसे कि हमारी दुनिया में ये बात कही जाती है कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी ना किसी का हाथ है, हमारी तमाम रूहानी नेमतों, बरकतों और ख़ास कर मसीह में उन तमाम रूहानी खजानों के पीछे यीशु मसीह का हाथ है। जैसे इस दुनिया में कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा कामयाब है तो लोग कहते हैं कि इसके पीछे इसके माँ बाप का हाथ है, क्योंकि आज ये बच्चा इसीलिए कामयाब है, तरक्की याफ्ता है। और मैं आज चाहता हूं कि आज हम 6ठी आयत में इस बात को देखें कि पालूस रसूल कहता है कि हमारी तमाम रूहानी नेमतों, हमारा जो इख्तियार, हमें जो मकाम, हमें जो शिनाख्त, हमारी जो पहचान है, वो किस नाम और किस कुदरत के वसीला से है। और आप सब यहां पर देख सकते हैं कि छठी आयत में पालूस कहता है, और मसीह में, जब हम लफ्ज मसीह का देखते हैं तो यहां पर क्या कहा गया है, और मसीह में शामिल करके। छठी आयत में ये बात पालूस रसूल कहता है कि मसीह में शामिल करके। फिर उसके बाद सातवीं आयत में कहता है जो मसीह यसू में हम पर। फिर हम देखते हैं आगे चलकर, फिर पालूस रसूल कहता है 10वीं आयत में, और मसीह यसू में। पालूस रसूल यहां पर चाहता है कि उसके पढ़ने वाले, सुनने वाले इस बात की तरफ मतवज्जा हों कि मसीह में क्या कुछ उनको हासिल है। जैसे अगर कोई जागीरदार हो तो उसके बच्चों को पता है कि उनके बाप की जागीर में उनका क्या हिस्सा है। अगर कोई 25 मरब्बों का मालिक है तो उसके दो बेटे हैं तो उनको पता है कि उस 25 मरब्बों में से उन्हें क्या मिलेगा अपने बाप की तरफ से। तो यहां पर पालूस रसूल छठी आयत में हम ईमानदारों को चाहता है कि हम इस बात की तरफ ध्यान करें, और मसीह यसु में शामिल करके उसके साथ जलाया। वो पालूस रसूल यहां पर ध्यान दिलाता है कि मसीह यसु में खुदा ने जब हमें उसके साथ शामिल किया, उसके साथ हमें रफाकत में एक बनाया, उसके साथ हमें जब हम मुर्दा थे हमें जिंदा किया। और कहां पर बिठाया मसीह यसु में? आसमानी मकामों पर। ये ईमानदारों की रूहानी हालत है, और हर एक ईमानदार को पालूस रसूल चाहता है कि इस बात का यकीन करे कि वो मसीह यसु में बेशक इस जमीन पर, हो सकता है गरीब है, हो सकता है गुलाम है, हो सकता है कि दूसरी चीजों का उसे सामना है, लेकिन मसीह यसु में उसे क्या है? इब्राहिम की मीरास, इब्राहिम में वो तमाम बरकतें हासिल हैं। मेरे साथ एक हिवाला निकालें, कुलसियों 2 बाप, कुलसियों हम पढ़ेंगे 3 बाप, कुलसियों 3 बाप में पालूस रसूल यहां पर हमें सिखाता है और बयान करता है कि हमें मसीह यसु में क्या कुछ हासिल है। जब वो यहां पर कहता है 10वीं आयत में, यहां पर भी वही बात चल रही है कि मसीह यसु में शामिल करके हमें आसमानी मकामों पर बिठाया, जहां पर खुदावंद यसु मसीह बैठा हुआ है खुदा की दाहिनी तरफ। कुलसियों 3 बाप उसकी 10वीं आयत में पालूस कहता है, और नई इंसानियत को पहन लिया। यहां पर पालूस रसूल जो बात कर रहा है, नई इंसानियत को पहन लिया, यानी कि जब हमने यसु मसीह को कबूल किया तो हमें नई पहचान मिल गई। हमने यसु मसीह को पहन लिया जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालक की सूरत पर नई बनती जाती है। और वहां पर पालूस कहता है, ना कोई यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना कोई ना मख्तूनी, ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद, बल्कि मसीह सब कुछ और सब में है। यसु मसीह में जब हम ईमान लाते हैं तो हमें शामिल किया जाता है खुदावंद यसु मसीह की तमाम मीरास में, उस तमाम रूहानी बरकात में जो हमें मसीह यसु में हासिल है। अगर हम पीछे जाएं इफ़सियों 1 बाप, तो उसकी 3री आयत में पालूस रसूल फिर इसी बात की तरफ तवज्जो दिलाता है। कहता है 3री आयत में, इफ़सियों 1 बाप उसकी 3री आयत, हमारे खुदावंद यसु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। पालूस रसूल उस दौर में जब वो इफ़सियों की कलीसिया को ये खत लिख रहा था, तो वो चाहता था कि वो इस बात की तरफ और इस बात में इतने मजबूत बन जाएं कि उनको मसीह यसु में क्या कुछ हासिल है। जैसे रूमी हुकूमत में जबर कोई रूमी होता था तो उस रूमी को रोम के असूल के मुताबिक उसे अच्छा समझा जाता था दूसरों की निस्बत। उसे बहुत सी दूसरी अच्छी बातें मिलती थी, जैसे कि वो शहरियत के लिहाज से अच्छा गिना जाता था, और फिर उसे कुछ ना कुछ ऐसे एजाज मिलते थे जो रूमी हुकूमत के इख्तियार में थे। जैसे मिसाल के तौर अमेरिका में अगर कोई अमेरिका का रहायशी है तो उसे क्या मिलता है, उसे तालीम के लिए बहुत से मौके मिलते हैं क्योंकि वो उस मुल्क का हरायशी है, उस मुल्क का रहने वाला है। बहुत दफ़ा यहाँ पर एक और बात की जाती है कि अगर कोई यहाँ का रहने वाला है वो अपनी नौकरी खो दे तो हुकूमत उसे जब तक उसे नौकरी ना मिल जाए उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करती है, और बहुत दफ़ा घर भी रहने को देती है। और अगर वो इतना बेकस हो कि उसके पास कुछ ना हो, अगर वो बीमार पड़ जाए तो गवर्नमेंट उसकी बीमारी की भी देखभाल करती है। तो यहाँ पर जो बात पालूस रसूल चाहता है कि ईमानदार सीखें वो ये है कि जिस तरह इस दुनिया में जब हम किसी ग्रुप या किसी ग्रुप के साथ होते हैं तो उनमें हमें बहुत सी सहूलतें मिलती हैं। पालूस रसूल यहाँ पर चाहता है कि यसु मसीह ऐसा ऐसा जरिया और वसीला है जिससे आसमानी बरकतें जारी होती हैं, जिससे हर तरह की बरकत हमें मिलती हैं, क्योंकि वही आसमानी बरकतों का मंबा है जिससे बरकत जारी होती है, जिससे जिंदगी मिलती है, जिससे सहूलत ये मिलती है कि हम उसमें महफूज हैं, जिसमें ये हमें बात मिलती है कि वो हमसे वफादार रहेगा, जिससे हमें ये बात मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये दुनिया फना हो जाए, वो अपना जहन हमारे मतलब नहीं बदलेगा क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। तो पालूस रसूल यहाँ पर ये बात चाहता है कि आज हम भी सीखें, और मैं चाहता हूँ कि हम सब बहन भाई बुजुर्ग बच्चे इस बात को इतनी मजबूती से थाम लें कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी पहचान ना भूलें, क्योंकि जिस दुनिया में जिस दौर में जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं ये दुनिया चाहती है कि हम अपना सोचने का तरीका बदल कर दुनिया की मानद बन जाएं। इसलिए हमें हर रोज खुदा की मोहब्बत को याद रखने की जरूरत है कि वो हमसे वफादार है, इसलिए हमें उससे वफादार होने की जरूरत है। मेरे साथ एक हवाला निकालें, रोमियो 8 बाप उसकी 39वीं आयत। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल इस बात की तरफ इशारा और इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कहता है कि मसीह यसू में, जो मसीह यसू में हैं, यानी कि जिन्होंने यसु मसीह को कबूल किया है, जो यसु मसीह पर ईमान रखते हैं, उनकी जिंदगी में चाहे दुख मुसीबत परेशानी कुछ भी आ जाए, खुदा अपनी मोहब्बत उनसे कभी भी जुदा नहीं करेगा। खुदा वफादार रहता है, हम बेवफा हो सकते हैं, ये खुदा में सबसे बड़ी खासियत पाई जाती है। जैसे हमारे मौजूदा दौर में इलेक्शन का दौर है और बहुत से रहनुमा क्या वादे करेंगे कि हमको हम अगर आप अब हम में शामिल हो जाएंगे, अगर आप हमारी पार्टी में हमारे ग्रुप में शामिल होंगे, हमारे साथ मिलकर ये काम करेंगे मिसाल के तौर पर, तो हमें ये फायदे मिलेंगे, ये सहूलतें मिलेंगी, ये बातें हमारे लिए भलाई की होंगी। तो पालूस रसूल के इस बात में से मैं चाहता हूं कि हम भी ये सीखें कि हमें मसीह में क्या कुछ हासिल है। सो रोमियो 8 बाप उसकी 38वीं आयत को देखते हैं। यहां पर पालूस रसूल कहता है, क्योंकि मुझको यकीन है, पालूस रसूल कहता है मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यसु मसीह में है, बात फिर वही आ गई, यसु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा करेगी ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। पालूस सूल यहां पर इस हकीकत को बयान करता है कि जो मोहब्बत खुदा ने यसु मसीह में हमसे की है, यानी कि जो यसु मसीह के नाम से जाने जाते हैं, जो यसु मसीह के बात का यकीन करते हैं कि वो खुदा का बेटा है, वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, वो सलीब पर कुर्बान हुआ और दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमानी मकामों पर जा बैठा। उन सब को पालूस कहता है, अगर हम मर भी जाएं तो हम उससे जुदा नहीं होंगे। ना जिंदगी हमको जुदा कर सकती है, ना फरिश्ते। फरिश्तों की कोई भी ताकत हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती जो मसीह यसू में है। ना कोई हुकूमत, ना हाल, ना इस्तकबाल की देखी अनदेखी कोई भी कुदरत, कोई भी चीज हम सबको खुदा से जुदा नहीं कर सकती। इसलिए हमें हर रोज ये बात याद रखने की जरूरत है, खुदा वफादार है, हमें उससे वफादार रहने की जरूरत है। अगर हम बेवफा भी हो जाएं, लेकिन वो हमसे वफादार रहेगा, क्योंकि इफिसियों 2 बाब उसकी 6 आयत में क्या कहा गया है, और मसीह यसू में शामिल करके, यानी के साथ उसके साथ मिला दिया, उसके साथ हमें एक बना दिया, हमें उसकी पहचान दे दी गई, उसका नाम दे दिया गया, हम उसके लोग बन गए, शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। सो ये हमारी रूहानी हालत है। हम इस जमीन पर बेशक नीचे बैठे हुए हैं, हम इस जमीन पर बेशक बहुत सी मुसीबतों का सामना करते हैं, लेकिन जब हम इस जमीन पर से रुखसत होंगे तो हमें आसमान पर खुदावंद यसु मसीह के तख्त के सामने जगह मिलेगी। उसकी हजूरी में, आसमानी मकामों में ये हमारी पहचान है। सो इस बात को जो सच आज हमने सीखा है कि आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, हमारा आसमानी जो खानदान है वो आसमान पर है, ये दुनिया आरजी है, हमारा हकीकी वतन आसमान है, हमें ये बात दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। हमें ये बात अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बताने की जरूरत है। जैसे शुरू में कहा गया था कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी का हाथ है। आपके बच्चों की जिंदगी को, इस कलीसिया को देखकर लोग कहें कि ये जिंदा मसीह के लोग हैं। जैसे बनी इसराइल कौम को देखकर कहते थे कि उनका खुदा डाडा है, यानी कि ताकत वाला है, बड़ा है, क्योंकि वो जब जब उस पर यकीन करते थे शर्मिंदा नहीं होते थे। हमें भी आज यही बात सीखने की जरूरत है कि हमें मसीह यसू में आसमानी मकामों पर बहुत बड़ा दर्जा मिला है, जिसके लिए इफिसियों 1 बाब उसकी 20वीं आयत आप पढ़ सकते हैं बाद में, जिसके लिए हम ये देख सकते हैं सबसे बड़ी बात कि हमें आसमानी मकामों पर खुदावंद के यसु मसीह में एक बड़ी मिसा मीरास हासिल है। सो इस बात को हम हरगिज ना भूलें कि हम मसीह में महफूज हैं, वो हम हमारी तरफ से अपना जहन कभी नहीं बदलेगा। बेशक हम पत्रस की तरह उसका इनकार भी कर देंगे, लेकिन वो हमारा इनकार नहीं करेगा। बेशक हम पत्रस रसूल की तरह नाकाम होंगे, डरेंगे, भागेंगे और कहेंगे कि नहीं, मुझसे नहीं होता, लेकिन वो फिर भी हमसे मोहब्बत करता रहेगा। सो आए हम खुदा के जुर झुकें और अपने बच्चों तक ये सच्चाई पहुंचाएं कि हम मसीह यसू में कौन हैं, खुदा के बेटे और बेटियां। खुदा बाप, आए हुए तमाम बुजुर्गों के लिए, माओं के लिए, बच्चों के लिए, भाइयों के लिए और सबसे बढ़कर तेरे कलाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। सब कुछ छू, बड़ी बरकत दे और आज सारे दिन में हम इस बात की तरफ सोचते रहें कि हमें और कुछ क्या हासिल है मसीह यसु में और दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। यसु के नाम में आमेन।